मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग आइए अपनी पुरानी श्रृंखला को शुरू करते हैं और आज मैं आपसे बात करूंगा कि विचार के लिए आप विषय कहां से लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। लेकिन इससे पहले जो एक दो छोटी खबरें हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। एक खबर अखबारों में अब धीरे धीरे जोर पकड़ती चली जा रही है, चैनल्स पर भी अब इस पर बहस हो रही है। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा इस बात की कर रहा था कि यह एक राष्ट्रीय घटना के रूप में कितना जोर पकड़ सकती है, लेकिन अब इसने जोर पकड़ लिया है और दैनिक भास्कर ने बकायदे आज इस पर एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, एक दो अखबारों ने और भी इस पर लिखे थे। दोस्तों, ये बाल विवाह को लेकर है। आपको मालूम है कि असम में जब बाल विवाह हो रहे थे तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और फिर गिरफ्तारी भी हुई और इसके बाद ये राष्ट्रीय बहस का एक मुद्दा बन गया। तो डेफिनेटली बाल विवाह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के सिलेबस का है। स्पष्ट रूप से वहां नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो अपने आप में वो बहुत व्यापक हो जाता है, वो छोटा सा नहीं रह जाता। तो जो आपके समाज का सिलेबस है आप देखिए कि उसकी डिटेलिंग्स वहां नहीं दी हुई हैं। महिलाओं के अधिकार के बारे में डिटेलिंग्स हैं, लेकिन संवेदनशील और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कही गई है, लेकिन और दूसरी बातें वहां मेंशन नहीं है। इस हिसाब से ऊपरी तौर पर देखने से लगेगा कि नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये आपके सिलेबस का पार्ट है, बाल विवाह। अब चूंकि इस पर एक राष्ट्रीय बहस की शुरुआत हो गई है तो आप ये मानकर चले कि इस पर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। जब आपकी इस पर तैयारी होगी तो उसका पैटर्न क्या होगा? पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है। पहला तो यह है कि जो बाल विवाह है, बाल विवाह भारत में होते क्यों है, पहली बात। ये हमारी परंपरा में कहां से आई, अगर इसे आप नहीं भी जान पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी परंपरा में है, इतना ही आपके लिए सफिशियंट चलिए हो सकता है। अशिक्षा के कारण और दूसरे दबावों के कारण हमारे यहां बाल विवाह की परंपरा शुरू हो गई है। इसकी बुराइयां क्या हैं, इसके यूं कह लीजिए कि कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं समाज को। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, लड़कियों के महिलाओं के स्वास्थ्य पर आगे चल करके बहुत ज्यादा गलत असर पड़ता है, इस तरह की कुछ बातें उसमें आ जाएंगी। ये तो बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, मतलब ये केवल एक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी शुरुआत अब होती है। पहला ये है, क्या इसके खिलाफ कोई एक्ट है, अगर है तो वो क्या है, बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही थोड़े से, क्योंकि एक्ट के ऊपर नहीं पूछा जाएगा कि बाल विवाह के विरुद्ध कौन सा कानून बनाया गया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या प्रावधान हैं, इस पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक्ट मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप इस तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो आप उस विषय पर कुछ लिख नहीं पाएंगे। प्रश्न पता नहीं किस तरीके का पूछ लिया जाए, तो उसके लिए तो आपको तैयारी चौतरफा करनी पड़ेगी ना। अब जो सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, जिस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है, और वो ये कि कानून बने हुए इतने साल हो गए, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, हमारी शिक्षा का प्रतिशत, साक्षरता का प्रतिशत इतना अधिक बढ़ गया है, लड़कियां भी बकायदे शिक्षित होने लगी हैं, पढ़ी लिखी होने लगी हैं, आप देखिए कि हमारे पॉपुलेशन भी लगभग स्थिरता की स्थिति तक आ गई है, इसके बावजूद बाल विवाह क्यों हो रहे हैं? देखिए, घटना तो यहां हुई और इस घटना पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये असम की घटना है, दूसरे राज्यों में भी बाल विवाह होते हैं। और जब बाल विवाह होते हैं, बिल्कुल आप यूं कह लीजिए कि समूह के रूप में बाल विवाह होते हैं, कुछ ऐसी तिथियां आती हैं जब ऐसा किया जाता है, तो उस समय अखबारों के वो हिस्से बनते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा नहीं बन पाती, ये बन गई है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो गया है। तो आपको सोचना ये होगा, जो विचार करना है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, कि एक्ट बन गया है, इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल बाल विवाह के संदर्भ में एक्ट काम नहीं कर रहा है। आप देखिए कि दहेज प्रथा के खिलाफ एक्ट है, दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, ऐसे बहुत से एक्ट हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं? तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, संख्या जो कम होती हुई दिखाई दे रही है उसके पीछे किसकी ताकत है? कानून की ही तो ताकत है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून का भय तो रहता है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे जो बाल विवाह करना तो चाह रहे हैं लेकिन उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो अपने आप को रोक लेते हैं। तो देखिए, जो थोड़े बहुत जो इस तरह की घटनाएं आपको सुनने पढ़ने को मिल जाती हैं उसके आधार पर आप ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि एक्ट बनाना बिल्कुल बेकार होता है, वो काम नहीं करते हैं। एक्ट काम करते हैं, नियंत्रण रखने का काम करते हैं, उसको पूरी तरह समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये पूरी तरह से समाप्त कैसे हो सकते हैं? यहीं पर आता है समाज का रोल, कि जो समाज है ये एक सामाजिक परंपरा है और सामाजिक परंपरा को पूरी तरह से कानून के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो कानून है वो कहीं ना कहीं उसके लिए मदद करते हैं, या यूं कह लीजिए कि दिशा निर्देश देते हैं, एक रास्ता तो बना ही देते हैं और समाज को उस पर चलना है। तो निष्कर्ष ये है कि जब समाज में धीरे धीरे और चेतना पैदा होगी, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, लोगों में समझ बढ़ेगी, तो डेफिनेटली पहले की तुलना में बाल विवाह धीरे धीरे कम होते ही जा रहे हैं, तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम और अधिक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि सामाजिक चेतना पैदा की जाए और खासकर जो पढ़ा लिखा जो युवा वर्ग है इसके विरुद्ध अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करें। ये एक तरीके का निष्कर्ष हो सकता है। इसको लेकर दैनिक भास्कर ने अपना एक एडिटोरियल कमेंट आज लिखा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे आप देख लेंगे। जो दूसरी खबर है दोस्तों, वो संसद में अदाणी के मामले को लेकर जो बहस चल रही है वह है। मैं चाहूंगा कि जब बहस हो तो उसे आप थोड़ा सा देखें समझे, एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से नहीं। एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि संसद में किस तरह की बहस हो रही थी, क्या होती, आप केवल इस लिहाज से देखें कि किस तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं और उनके जवाब किस तरीके से दिए जाते हैं, इन दोनों पर आप विचार करें। मैं चाहता हूं कि आप में विचार करने की शक्ति पैदा हो और यही हमारा मुख्य विषय भी है। तो वो शक्ति आएगी कहां से? हवा से नहीं आ सकती। जो लोग सच में विचारशील हैं या विचार करते हैं, आप देखिए कि उनमें एक बहुत बुरी आदत होती है कह लीजिए या अच्छी आदत, जो भी आप कहना चाहें, वो पढ़ते बहुत हैं। क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके दिमाग में विचार पैदा हों। पढ़ने से आपको एक उत्तेजना मिलती है। हो सकता है कि आपने एक ऐसा वाक्य पढ़ लिया है जिससे आप सहमति नहीं है, तो जब आप सहमत नहीं होंगे तो आपके दिमाग में एक उत्तेजना पैदा होगी और उसके विरुद्ध आप सोचने लगेंगे, बस विचारों का सिलसिला शुरू हो गया। तो आप देखिए कि जब अदाणी के मामले में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, आपको लगेगा कि प्रश्न तो बिल्कुल सही उठाए जा रहे हैं, इनके जवाब दिए जाने चाहिए, और जब जवाब देने की कोशिश होती है तो फिर से यह लगता है कि यार ये तो जवाब दे दिया गया है, या फिर प्रश्न कुछ पूछा जा रहा है और जवाब कुछ दिया जा रहा है। ये केवल इसी मामले में नहीं होता। आप जब भी चैनल्स पर जब इस तरह के बहस देखेंगे किसी भी मुद्दे पर, अगर वहां राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को बुला लिया गया तो हमेशा आपको यही मिलेगा कि ज्यादातर मामलों में कि पूछा कुछ जा रहा है और जवाब कुछ दिया जा रहा है। आपको इसका आकलन करना चाहिए। ठीक है, उनके अपने तौर तरीके हैं, चैनल्स की अपनी डिमांड्स हैं, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं। हम तो यहां बात सिर्फ इस पर कर रहे हैं कि आप चूंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टैंड क्या होना चाहिए। और मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न पूछा गया है और उसका जवाब दिया गया है, आपको लग रहा है कि यार ये जवाब तो नहीं हुआ, और अगर आपको इतना लग ही गया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपका काम हो गया। क्योंकि परीक्षा में भी तो हम लगभग लगभग यही कर बैठते हैं कि प्रश्न कुछ पूछा जाता है, हम उत्तर कुछ दे करके आ जाते हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी? वहां भी आपको यही दिखाई देगा। लेकिन पहली बात तो यह है कि इसकी समझ तो हो कि ऐसा होता है और ये आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी इस तरह की बहस की स्थिति आती है तो आपको ध्यान से उसे सुनना चाहिए। ध्यान से मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वहां तो आपको हल्ला गुल्ला दिखाई देगा, वहां बात फिर बनेगी नहीं। आप उनके पॉइंट्स देखिए, उसमें जो सार है उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए और फिर उन पर आप विचार कीजिए। यहीं से आपको विचार करने के सूत्र मिलेंगे और विचार करने के आधार भी मिलेंगे। क्योंकि देखिए, बिना बेस के तो आप विचार नहीं कर सकते। तो ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए बेस का काम करते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ बातें आप सबसे इससे पहले शेयर की थी, आगे चल करके मैं और शेयर करूंगा कि जो सामान्य व्यक्ति होगा वो किसी भी बात पर, किसी भी इश्यू पर बहुत ही सतही तौर पर अपनी बातें रखेगा, अपने तर्क रख देगा। लेकिन आप जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने 10वीं तक मूलभूत विषयों का अध्ययन किया है और इन विषयों की नींव आपके मस्तिष्क में तैयार हो गई है, जब ऐसा व्यक्ति उन्हीं विषयों पर विचार करेगा, उन्हीं विषयों पर तर्क देगा, तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, वो विषय के आधार पर बात करेगा। और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो केवल अपने अनुभव के आधार पर बात करेगा, जो कुछ भी उसने सुना है, जो कुछ भी उसने महसूस किया है, केवल उसके आधार पर वह अपनी बात कहेगा। तो उसकी बात विश्वास का आधार बन सकती है, कन्विंस का आधार नहीं, कि भाई ठीक है ये कह रहा है, हाँ यार ऐसे ही तो चलता आया है, ऐसे ही तो होता आ रहा है, तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जब आप कहेंगे तो सामने वाला कन्विंस होगा कि नहीं नहीं ये जो बात कह रहा है यार, इसमें दम है, इसमें तथ्य है, इसमें तर्क है, और यही वास्तव में विचार होते हैं, और सिविल सर्विस इसी की आप सबसे डिमांड करता है। तो दोस्तों, ये जो दो टॉपिक, दो खबरें आप कह लीजिए कि मैंने जो ली हैं, उनके आधार पर मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आपको विचार करने के लिए किस तरीके से शुरुआत कर देनी चाहिए। इस टॉपिक पर हम लोग और आगे भी बातें करेंगे। फिलहाल मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में कुछ दोस्तों के नाम हैं, रवीना राय खपुरा बिहार से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, दीपेश कुमार झा बिठौली बिहार से, अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, और आलोक शुक्ला सीधी मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।